एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, कबूल करें संज्ञा का। नई पुरानी फिल्मों के गीतों के बनने संवरने की कहानियां सुनते सुनाते एक गीत 100 अफसाने का ये सफर पिछले सप्ताह अपनी 50वीं कड़ी के पड़ाव को पार कर आज से एक नए सफर पर चल निकला है और अगला पड़ाव है इसकी 100वीं कड़ी। इस सफर में हमारे हम सफर बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारी शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होता है हमारा ये कार्यक्रम एक गीत 100 अफसाने। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2011 की सुप्रसिद्ध फिल्म रॉक स्टार के गीत नादान परिंदे घर आजा, मोहित चौहान और एआर रहमान की आवाजें। गीतकार इरशाद कामिल के बोल और संगीतकार एआर रहमान का संगीत। क्यों खास है ये गीत? फिल्मफेयर पुरस्कार तो हर साल ही मिलते हैं, पर इस फिल्म के गीत संगीत को मिले फिल्मफेयर हटकर क्यों हैं? क्या समानता है इस गीत की पिया मिलन की आस और हिमालय पुत्र फिल्मों के एक एक गीत के साथ? कैसी गलतफहमी पनपी थी इरशाद कामिल और रॉकस्टार के निर्माता इम्तियाज अली के बीच इस फिल्म के किसी गीत को लेकर? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं रितेश खरे सब्र।
दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने में हम अधिकतर पुराने सदाबहार गीतों की ही चर्चा करते चले आए हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इसमें नए जमाने के गीतों को कभी शामिल ही ना करें। संख्या में कम जरूर, पर अच्छे गाने नए जमाने में भी बने हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी बनते रहेंगे। और इस बात का प्रमाण है वह गीत जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। फिल्म रॉकस्टार का गीत नादा परिंदे घर आजा अपने समकालीन गीतों से काफी हटकर है और इसीलिए ये गीत हमारी इस सीरीज की आज शोभा बढ़ा रहा है। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को ये चर्चा करते हुए पाते हैं कि पहले की तुलना में फिल्मी गीतों का स्तर गिर गया है। अब वो बात नहीं रही फिल्मी गीत संगीत में, और काफी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसमें केवल कलाकारों का दोष नहीं, फिल्म और फिल्म संगीत समाज का ही आईना होता है। जो समय चल रहा है, जो दौर जारी है, समाज की जो रुचि है, वही सब कुछ फिल्मों और फिल्मी गीतों में नजर आते हैं। और यह भी उतना ही सच है कि अगर कलाकार चाहे तो तमाम पाबंदियों, तमाम दायरों में बंद कर भी अच्छा काम कर सकते हैं। खास तौर से गीतकारों की बात करें तो गुलजार और जावेद अख्तर जैसे गीतकार अपने नए जमाने के गीतों का स्तर भी अपने पुराने गीतों जैसा ही रखने में कामयाब रहे हैं। हाँ, उनमें नए जमाने का रंग जरूर चढ़ा है। नई पीढ़ी के गीतकारों में एक चमकता नाम है इरशाद कामिल का, जिन्हें साल 2011 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है फिल्म रॉकस्टार के नादा परिंदे गीत के लिए। नादा परिंदे घर आजा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं। परिंदों की आड़ लेकर इरशाद कामिल ने इस गीत में अपने घरों से दूर जा बसने वालों की तरफ इशारा करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि लाख लुभाए महल पराए, अपना घर फिर अपना घर है। इस गीत पर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि इसी भाव पर कम से कम दो और गीत जो बेहद कामयाब हुए हैं, वे हैं फिल्म नाम का चिट्ठी आई है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। नादा परिंदे गीत में मीराबाई लिखित दोहा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मुहे पिया मिलन की आस, का भी बहुत सुंदरता से प्रयोग किया गया है। इसका भावार्थ ये है कि मीराबाई कौए से कहती हैं कि उनके मर जाने के बाद भले वो उनका पूरा शरीर खा ले पर उनकी दो आंखों को ना खाए, क्योंकि उनकी आंखें तब भी अपने कृष्ण की राह तक रही होंगी। प्रस्तुत गीत के थीम से मेल खाता है ये दोहा, गीत में बहुत अच्छी तरह से समा गया है। वैसे इस दोहे का प्रयोग पहले भी फिल्मी गीतों में हुआ है। आपको शायद याद हो कि अक्षय खन्ना की पहली फिल्म हिमालय पुत्र में अलका याग्निक ने एक गीत गाया था जिसका मुखड़ा यही दोहा था। कोरस द्वारा गाए इस दोहे के बाद मुख्य मुखड़ा अलका गाती हैं, किथे नैन न जोड़ी मेरा मान न तोड़ी तेनु वास्ता खुदा दा। साल 1961 में एक फिल्म बनी थी पिया मिलन की आस। इस फिल्म के शीर्षक गीत के लिए इस दोहे से बेहतर भला और क्या हो सकता था। तभी लता मंगेशकर के गाए मुखड़े पिया मिलन की आस मोहे पिया मिलन की आस से पहले ये दोहा गाया गया है। फिल्मों के बाहर भी इसे कई कई बार गाया गया है। हाल के सालों में नुसरत फतेह अली खान और कैलाश खेर के वर्जन लोकप्रिय हुए हैं। अब बात करते हैं नादा परिंदे गीत के संगीत संयोजन की। गीत के शुरू में ही जो लाउड ऑर्गन बज उठता है उससे कैथेड्रल की छवि उभर कर सामने आती है। इलेक्ट्रिक गिटार पर संजीव थॉमस लाजवाब हैं। परकशनिस्ट शिवमणि की भूमिका भी इस गीत में कम सराहनीय नहीं। संगीतकार एआर रहमान, जिन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर जीता है, इस गीत में अपनी आवाज भी मिलाई है जो सुनने वाले को जरूर हॉन्ट करती होगी। वैसे मुख्य गायक तो मोहित चौहान ही हैं, पर रहमान के वोकल्स के क्या ही कहने। ऐसा बहुत कम हुआ है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों में गीतकार, संगीतकार और गायक को एक ही फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया हो। जहां इरशाद कामिल को इस गीत के लिए और एआर रहमान को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, वहीं मोहित चौहान को भी इस फिल्म के जो भी मैं गीत के लिए यह पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर रॉकस्टार का गीत संगीत ही छाया रहा फिल्म फेयर के संगीत विभाग के पुरस्कारों में। उस साल पुरस्कारों की दौड़ में जो अन्य फिल्में थीं उनमें प्रमुख थीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रावण, बॉडीगार्ड, द डर्टी पिक्चर, सिंघम, मर्डर टू, दिल्ली बेली, डॉन टू और मौसम। जहां एक तरफ नादा परिंदे गीत के पीछे पुरस्कारों की लाइन लग गई, वहीं दूसरी तरफ एक विवाद भी खड़ा हो गया था। हुआ यूं कि इस फिल्म की ऑडियो सीडी के कवर पर इरशाद कामिल का नाम नहीं दिया गया, बल्कि कवर पर कवि रूमी का नाम छपा है, जिनकी कविता को रणबीर कपूर ने पर्दे पर गाया है। इंडस्ट्री में ये बात चल पड़ी थी कि इरशाद कामिल इस बात से ना खुश हैं, बल्कि यूं कहें कि वो फिल्म के निर्माता इम्तियाज अली से ना खुश हैं। इससे पहले इरशाद ने इम्तियाज की सोचा ना था, जब वी मेट और लव आजकल के गाने लिखे थे। सोचा ना था कि संगीतकार संदेश शांडिल ने पहली बार इरशाद की भेंट इम्तियाज से करवाई थी। इस गड़बड़ी का जिक्र जब मीडिया ने इम्तियाज से किया तो उन्होंने बताया कि यह एक क्लरिकल एरर था और कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि इरशाद उनके दोस्त हैं और सीडी के अगले लॉट में इस गलती को सुधार लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से इस गलती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि यह फिल्म के निर्माता की गलती है, जिन्हें सीडी कवर को ध्यान से देखकर ही अप्रूव करना चाहिए था। भूषण कुमार के शब्दों में, एल्बम के कवर पब्लिसिटी डिजाइनर द्वारा बनाए जाते हैं और शायद वो इरशाद का नाम डालना भूल गए होंगे। ऐसा फिल्म मौसम के साथ भी हुआ था, पर मैंने जैसे ही ये देखा उसे ठीक कर दिया। इरशाद कामिल ऐसे पहले गीतकार नहीं हैं जिन्हें ऐसे हालात से गुजरना पड़ा हो। उनसे पहले संगीतकार सागर देसाई ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोनी म्यूजिक, फॉक्स स्टार स्टूडियोज और फैट फिश के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उन्हें क्विक गन मुरुगन के सीडी पोस्टर और वेबसाइट में क्रेडिट नहीं दिया गया था। खैर, इरशाद साहब और इम्तियाज साहब के बीच जो भी गलतफहमी हुई हो, नादा परिंदे गीत को सुनकर जैसे एक आस की किरण नजर आने लगती है कि शायद अर्थपूर्ण गीतों का दौर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जब इरशाद कामिल से उनके किसी साक्षात्कार में पूछा गया कि आज के गीतों में अर्थ कम और शोर शराबा ज्यादा होता है, इस बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बताया, आप सही कह रहे हैं कि फिल्मी गीतों के बोल बदल गए हैं, पर यह भी तो देखिए कि सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि फिल्में और पूरा समाज भी तो बदल गया है। आज भारतीय युवा पीढ़ी हिंदी कम और अंग्रेजी ज्यादा समझती है। अगर कोई शुद्ध हिंदी या वजनदार उर्दू के शब्द बोले तो बहुतों को समझ ही नहीं आएगी। मैं पुराने गाने पसंद करता हूं, पर हमें समकालीन रुचि के साथ भी तो चलना ही पड़ेगा। जो अच्छे शायर हैं वो अच्छी शायरी करते रहेंगे। आप जिन गीतों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो दरअसल डांस या आइटम नंबर्स हैं। उनसे अगला सवाल था कि किस तरह के गाने लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और उनका जवाब था, रोमांटिक गीत लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस विषय पर इतना कुछ लिखा जा चुका है कि कोई नई चीज लिखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कुछ शब्द जो इरशाद कामिल अपने शब्द कोश में नहीं रखते वे हैं दिल, धड़कन, जिगर, प्यार, इकरार, इंतजार वगैरह वगैरह। तो फिर किस तरह के गीत लिखना इरशाद साहब को सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे अकेलेपन के रोमांटिक गीत जिनमें दर्द है पर एक सूफी टच भी है लिखना पसंद है। आजकल क्या होता है कि जिन गीतों में अल्लाह या मौला शब्द लगे होते हैं उन पर सूफी गीत होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नादा परिंदे में भी एक अकेलापन सुनाई देता है, जीवन दर्शन दिखाई देता है। सूफी संगीत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले में आता है कव्वालियां, जिसमें है अल्लाह की बातें, अल्लाह तक पहुंचने की बातें, और दूसरे भाग में आता है दर्शन, दार्शनिक बातें, जिस तरह से कबीर दास और रहीम दास के दोहों में होती थी। इस तरह से कहीं ना कहीं इस गीत में इरशाद कामिल ने अपनी पसंद को शामिल किया है, यानी कि अकेलेपन और सूफी दोनों।
कादारे कादारे मोरी इतनी अरजितो से चुन चुन खाइयो मास रजिया रे खाइयो ना तो मैं ना मो खाइयो ना तो मैं ना मो पिया के मिलंगिया खाइयो ना तो मैं ना मो रे खाइयो ना तो मैं ना मो पिया के मिलंगिया।
तो दोस्तों, यहां पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शो दौरालेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर था रितेश खरे सब्र का, और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.